उपस्थित महानुभाव सप्तमी प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, हम सभी साधक भाई बहनों के सामने आज वर्तमान में एक प्रश्न है कि हम जिस स्तर के साधक हैं वहीं से अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। सबसे पहली बात जो मुझे सूझती है वह यह है कि पहले मनुष्य के व्यक्तित्व में शुद्धि आती है, फिर जब उसके भीतर से असत के संजनित विकारों का नाश हो जाता है तब उसके शुद्ध अहम में वह अलौकिक परिवर्तन होता है कि जिस परिवर्तन के फल स्वरूप अनंत की विभूतियों से वह अभिन्न होता है। यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अनेकों प्रकार की अशुद्धियों को रखते हुए असत के संग जनित सुख के प्रलोभन को रखते हुए आई हुई अनुकूलता के सुख को भोगते हुए हम सब लोग भगवत भजन करना चाहते हैं, भगवत भक्त होना पसंद करते हैं और उसके लिए विधियात्मक अनेकों साधनों का अनुसरण करने लगते हैं, तो दोनों ही चीजें जीवन में चलती रहती हैं। एक ओर किया हुआ भजन ध्यान भी चलता रहता है और दूसरी ओर अपने आप से होने वाला विषय चिंतन भी चलता रहता है, लोभ और मोह का आक्रमण भी होता रहता है। इस प्रकार का एक मिश्रित जीवन चलता है। थोड़ा थोड़ी देर शाम होकर बैठ भी गए, थोड़ी देर भजन भी कर लिया, थोड़ी देर पूजा भी कर ली, थोड़ी देर और किसी प्रकार का अभ्यास भी कर लिया और फिर वहां से उठे तो विविध प्रकार के कार्य में लग जाने पर क्रोध से प्रेरित भी हो रहे हैं, लोभ से प्रेरित भी हो रहे हैं, मोह से प्रेरित भी हो रहे हैं, दीनता और अभिमान से आक्रांत भी हो रहे हैं और फिर 12 घंटे का 10 घंटे का समय बीत गया तो संध्या समय रात्रि में सोने से पहले कुछ देर के लिए साधकपन के साधना भी कर रहे हैं। ऐसी दशा रहती है कि नहीं? ये रहती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जिन भाई बहनों के जीवन में थोड़ी बहुत विधियात्मक साधना का अभ्यास है, उसके प्रति निष्ठा है कि उसमें अभिरुचि है, तो वे भाई बहन अपनी उस की हुई साधना को छोड़े नहीं। मानव सेवा संघ की प्रणाली में स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को सुझाव दिया कि असाधन का नाश किया जाता है साधन की अभिव्यक्ति होती है। व्यर्थ चिंतन का नाश किया जाता है, सार्थक चिंतन होता है। विषय चिंतन का त्याग किया जाता है, भगवत चिंतन होता है। तो ध्यान होने की चीज है, भगवत चिंतन होने वाली बात है। करने वाली बात क्या है? तो करने वाली बात यह है कि मेरी जिन जिन भूलों से जीवन में अनेकों विकार उत्पन्न हो गए, उन भूलों का त्याग मैं करूं। तो मेरा पुरुषार्थ है अपने असत जाने हुए असत के संग का त्याग, ये मेरा पुरुषार्थ है। और अपनी की हुई भूलों को अपने जाने हुए असत के संग का त्याग जब हम मिटा देते हैं, की हुई भूलों को छोड़ देते हैं, असत के संग का त्याग कर देते हैं, तो अपना पुरुषार्थ पूरा हो गया। फिर क्या होगा कि अहम रूपी अणु में जो अशुद्धियां उत्पन्न हो गई हैं, उन अशुद्धियों का नाश होता है। तो अशुद्धि का नाश ये पहली बात है। अब आप कहेंगे कि भाई मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है कि अपनी अशुद्धि का नाश हम अपने से करें, मेरा तो संकल्प का बल इतना दुर्बल हो गया है कि इस शुभ संकल्प में भी ताकत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। सुख भोग की प्रवृत्तियों को प्रश्रय देने से व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है, अपनी आदतों के अधीन हो जाता है और बहुत सी बातों को गलत जानते हुए भी उसको छोड़ने की इच्छा रखते हुए भी छोड़ने में चूक जाता है। ऐसा भी कभी कभी होता है, किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है। तो क्या होगा उसका? क्या उसके लिए रास्ता बंद हो गया विकास का? मानव सेवा संघ से सलाह लीजिएगा तो संत के वचन से आपको सहारा मिल जाएगा। क्या सहारा मिलेगा कि अगर ऐसी ही दशा तुम्हारी हो गई कि भूतकाल की भूलों के प्रभाव से अहम रूपी अणु में अर्थात मुझ में इतने विकार उत्पन्न हो गए हैं कि अपने ही में अब सामर्थ्य नहीं है कि उनको हम मिटा सकें, अगर ऐसी दशा हो गई है तो भी निराश होने की बात नहीं है। तब क्या करना चाहिए? तो मत देखो अपनी भूलों को और मत डरो अपने अपराधों से, निराश मत हो अपनी दुर्बलता से। क्यों? क्योंकि सर्व सामर्थ्यवान तुम्हारे नाथ हैं, सर्वज्ञ परमात्मा तुम्हारे साथ है, क्षमा सिंधु तुम्हारे हितैषी हैं, सहायता देने वाले हैं। इस कारण से निराश हुए बिना ही अपनी सारी दुर्बलताओं के साथ अपने सब विकारों को देखते हुए भी उस सामर्थ्यवान की शरण में आ जाओ। अधीर होकर एक बार पुकार कर कह दो, हे समर्थ, मैंने अपनी ही भूलों से अपनी दुर्दशा कर लिया है, अब आप अपनी कृपा से मुझे उबारने। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि नहीं? एक कर सकते हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो यह बात हो गई कि विवेक के प्रकाश में अपनी की हुई भूलों को देखा जाए और अपने द्वारा उनका त्याग किया जाए। तो जब अशुद्धि मिट जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे सामर्थ्यवान साधक संसार में हुए, अभी भी हैं, जिन्होंने सत्संग के प्रकाश में इस बात को जान लिया कि मेरा जीवन सुख भोग के लिए नहीं है, सुख दुख के पार अनंत आनंद के लिए है, परम प्रेमास्पद प्रभु को प्यार करने के लिए है। ऐसा जिन्होंने सत्संग के प्रकाश में संत के संपर्क में निश्चय कर लिया, उन्होंने असत के संग का त्याग कर दिया। ऐसे साधक भी हुए और ऐसे साधक भी हुए कि जो त्याग करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, जो निर्विकार होना चाहते हैं और अपने ही बनाए हुए विकारों से हार जाते हैं, ऐसे साधक भी हुए। तो अनुभवी संत जनों ने सलाह दी कि जितनी सामर्थ्य तुम्हारे में बच गई है उतनी सामर्थ्य को लेकर तुम सतपथ पर आगे बढ़ो। जहां तुम अनुभव करोगे कि अब मेरा बस नहीं चलता, अधीन होकर परम कृपालुओं की कृपा का सहारा पसंद करोगे, तो उसी समय करुणा मैत्री करुणा का दरवाजा खुल जाएगा। बीच का एक ये भी रास्ता हो गया, एक ऐसा सामर्थ्यवान जिसने निश्चय पूर्वक सब बुराइयों का त्याग कर दिया, एक ऐसा असमर्थ जो कुछ भी नहीं कर सकता है तो अधीन होकर सर्व समर्थ की शरण में अपने को डाल दिया, एक दोनों के बीच की दशा जिसमें मैं अपने को रखती हूँ। आप में से भी बहुत से भाई बहन अपने को उस बीच दशा में ही पाएंगे कि बिल्कुल ही असमर्थता भी नहीं है और इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि एकदम अपने पुरुषार्थ से सब बुराई छोड़ दे। तो दोनों के बीच में सामर्थ्यवान और घोर असमर्थ, दोनों के बीच में हम लोग अपने को पाते हैं। अगर बिल्कुल असमर्थ होते तो किसी प्रकार के सुख भोग की प्रवृत्ति में शामिल भी नहीं हो सकते थे। जी नहीं हो सकते थे कि धन कमाने और मान बढ़ाई प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति में उलझ जाए, ये भी नहीं हो सकता था। अगर असमर्थ होते तो थोड़ी थोड़ी सामर्थ्य हम लोगों में बची हुई है, बिल्कुल असमर्थ नहीं है और पूरी तरह से समर्थ भी नहीं है। तो ऐसी बीच की दशा वाले साधक जो हैं उनको ये सलाह दी गई कि तुम प्रातः काल सोकर जगते ही सबसे पहले व्यक्तिगत सत्संग करो। अब ये मैं संप्रदाय मत मजहब देश युग परिस्थिति सबके पास जो मानव मात्र के जीवन के कल्याण के लिए साधना है उसका विवरण आपको दे रही हूँ इस आशा से कि सत्संग समारोह में जो भाई बहन आए हैं वे तत्काल इसी समय कदम उठाना चाहें तो उनके सामने राह दिखाई देनी चाहिए। इसलिए यह बात मैं निवेदन कर रही हूँ पत्र पुष्प के रूप में आपकी सेवा में अर्पण कर रही हूँ, क्योंकि मुझको यही निष्ठा दी गई कि श्रोता के रूप में भाई बहन जो बैठे हैं वे भी गैर नहीं है, कोई और नहीं है, प्रेमास्पद ही है जो मेरे वक्ता होने का राग मिटाने के लिए श्रोता बनकर बैठे हैं। तो श्रोता भगवान के चरणों में पत्र पुष्प अर्पण करना है मुझे, तो पवित्र होना चाहिए, हितकर होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो ये सुंदर पवित्र सुगंधित पत्र पुष्प आपकी सेवा में अर्पित है। वो क्या है कि किसी भी मत के मानने वाले हैं, किसी गुरु से मंत्र दीक्षा ली हो आपने, किसी संप्रदाय में दीक्षित हुए हो, कुछ भी आपकी साधना रही हो, आपका कल्याण अभिष्ट है मानव सेवा संघ को। तो मानव सेवा संघ के प्रणेता संत ने संघ की रंगभूमि के रूप में माँ धरित्री को प्रस्तुत किया। जैसा भी साधक होगा उसके कल्याण के लिए उसके लिए आवश्यक तत्व कुछ मिलना चाहिए। तो यह परम आवश्यक तत्व है कि प्रातः काल सोकर जगते ही तत्काल आप आंख मुंह धोकर के शांत होकर के बैठ जाइए और व्यक्तिगत सत्संग कीजिए। व्यक्तिगत सत्संग में क्या करेंगे कि पहले अपना लक्ष्य याद कीजिए, आज जो सवेरा हुआ है और जिस दशा में मेरी आंखें खुली हैं, तो अब रात्रि में आंखों को बंद करके निद्रा की जड़ता में डूबने से पहले अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा तिल के बराबर भी आगे बढ़ना है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में एक ईसाई मत के बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, तो उनसे बात हो रही थी स्वामी महाराज की। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी प्रार्थना के बारे में कुछ कहिए। तो महाराज जी ने कंठ सुनाया उनको। अब हम लोग जो बीच में दुभाषीय बैठते थे, हिंदी का अंग्रेजी करने, अंग्रेजी का हिंदी करने, वो कितना गलत सलत करते थे तो कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश करके पूरी तरह सुनाया उनको। तो सुन लिया उन्होंने। तो वे सज्जन अपने संबंध में कहने लगे कि स्वामी जी महाराज, हम लोग जब प्रातः काल सोकर जगते हैं तो परमात्मा को प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि परमात्मा से कुछ मांगे। परमात्मा से प्रार्थना हम लोग इसलिए करते हैं कि जो कुछ उन्होंने दिया है उसके लिए पहले उनको धन्यवाद दो। बहुत अच्छी लगी बात मुझे। तो कहते हैं कि ईसाई मत के अनुसार आंखें खुलती हैं तो हम प्रार्थना करके कहते हैं पिता से, ईसा मसीह ने बाप माना था, तो ईसाई लोग सब लोग परमात्मा को बाप मानते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग प्रातः काल उठ करके पिता से कहते हैं कि हे पिता, आज आंखें मेरी खुली तो आपने मुझे सूर्य का प्रकाश देखने को दिया, तो आज का दिन मेरे लिए नया दिन हो, आज का दिन मेरे लिए नव जीवन का दिन हो। और हे प्यारे, जब तक तुम्हारा प्रेम न पाऊं, ये नया नया दिन आता ही रहे। तुमने तो आज मुझको एक सवेरा देखने को दिया जिसमें कि मैं आगे बढ़ सकूं, इसके लिए तुमको बारंबार धन्यवाद। मेरी डायरी में लिखा हुआ है, बातचीत हो रही थी, स्वामी महाराज ने सुनाया, उन्होंने सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं तो मांगते नहीं है, पहले तो जितना उन्होंने दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। अपनी परंपरा में तो पता नहीं कहाँ से ये भूल समा गई कि आदमी युवावस्था में सोचता है कि ये अवस्था तो मुझको सुख भोगने के लिए मिली है, और जब वृद्धावस्था आ जाएगी, जब किसी प्रकार के सुख भोगने के लायक नहीं रहेंगे, तब पुरुषार्थ कर लेंगे परमार्थ का। तो सोचो तो सही, सुख भोग जैसी नीची से नीची स्थूल प्रवृत्ति के लायक तुम नहीं रहोगे तो परमार्थ जैसे उत्तम प्रवृत्ति के लायक कैसे रहोगे। सोचिए, जिस युवावस्था में धन कमाने की सामर्थ्य है, समाज से संपर्क बनाने की सामर्थ्य है, काफी अपने में शक्ति मालूम होती है, उस शक्ति काल में अगर असत्य के संग पर विजय पाने का पुरुषार्थ आरंभ नहीं करोगे तो शक्तिहीनता में ये काम कैसे हो जाएगा। तो यह पुरुषार्थ जो है जीवन का, वो प्रारंभिक काल से ही आरंभ होना चाहिए। इस भ्रम में कभी मत रहना कि युवावस्था जो है वो सुख भोगने के लिए है, जो नहीं करना हो चाहिए उसको करने के लिए है, और वृद्धावस्था आ जाएगी जब किसी काम के लायक नहीं रहेंगे तो परमात्मा को पकड़ लेंगे, ये नहीं होने का। परमात्मा से मिलने का, नित्य योग से अभिन्न होने का, तत्व बोध से अभिन्न होने का, परमात्मा के परम प्रेमी होने का पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि जो आज इसको आखिरी क्षण के लिए रख दिया जाए। तो आखिरी क्षण के लिए नहीं रखना है, सबके लिए है। प्रातःकाल जैसे ही आंख खुले, खुला कर लीजिए, आंख धो लीजिए और बैठ जाइए जहाँ सो रहे थे वहीं पर, उसी बिस्तर में शांत होकर के व्यक्तिगत सत्संग कीजिए। तो पहली बात क्या होगी कि अपने लक्ष्य को याद कर लो, आज सवेरा हुआ है, प्रभु का दिया हुआ जीवन का एक नया दिन आज मुझको मिला है, तो आज मैं दिन भर इस प्रकार से चलूं संसार में कि संध्या होने से पहले हमारे जीवन में परमार्थ के पक्ष में कुछ प्रगति हो, पहले ही याद कर लो। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात याद कर लीजिए कि अब देखें कि जो नहीं करना चाहिए तो करना मैंने छोड़ दिया क्या, छोड़ दिया है तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा से कृपा की भिक्षा मांग लीजिए। हे प्यारे, आपके नाम पर आपके आपकी प्रीति होने के लिए मैंने ये व्रत लिया है कि जो नहीं करना चाहिए तो नहीं करूंगा, तो हे समर्थ, आप मेरी सहायता कीजिए, असमर्थता के क्षणों में मेरा हाथ पकड़कर उबारिए। ऐसा होता है, सोच विचार करके ठीक ठीक काम करने के लिए आदमी चलता है और बीच रास्ते में कहीं प्रलोभन ने दबा लिया, कहीं भय ने दबा लिया, तो पहले का किया हुआ निश्चय खास मौके पर बदल गया, आदमी थोड़ा खिसक जाता है। ऐसा भी होता है। तो ऐसे क्षणों के बचाव के लिए ये भी मैंने क्रिश्चियनिटी की प्रार्थना में से सीखा। हमारी लड़कियों ने, स्टूडेंट्स ने सुनाया मुझको कि हम लोगों की प्रार्थना में एक पंक्ति ये भी होती है कि हे प्रभु, हे समर्थ, प्रलोभन की घड़ी में मुझको संभालना। तो सवेरे का निश्चय किया हुआ परमात्मा से उसी समय प्रार्थना कर लीजिए। अगर आप परमात्मा को मानते हैं तो, और मैं इसी दृष्टि से बोलती हूँ कि हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं प्रायः सभी परमात्मा के मानने वाले ही हैं। कोई कोई होगा जो न मानता हो, इसलिए उसकी चर्चा में छोड़ देती हूँ विचार करती। तो प्रार्थना कर लीजिए। ऐसा दिखाई देता है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, जो नहीं करना चाहिए सो करना मैंने छोड़ दिया। तो मेरा ऐसा अनुभव है अन्य संतों, भक्तों और साधकों के जीवन को मैंने सुना है, देखा है, विवेचन किया है, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि जो नहीं करना चाहिए सो नहीं करूँगा। ऐसा निश्चय आपने किया तो हो सकता है कि निश्चय करते समय सत्य के प्रकाश में आपने अपनी दुर्बलताओं को नहीं देखा, उत्साहित होकर के निश्चय कर लिया, परंतु उसका पालन करने की शक्ति उस समय आपके पास है नहीं। ऐसा हो सकता है। फिर भी यह जीवन का मंगलमय विधान है, दुर्बल व्यक्ति भी सत्य के भरोसे, परमात्मा के भरोसे सत्यपथ का कोई व्रत ले लेता है तो सत्य स्वयं ही उसकी रक्षा करता है, उसको शक्ति देता है और प्रलोभन के क्षणों में उसके कदम को आगे बढ़ा देता है। ऐसा भी होता है। ठीक जिस समय लोभ आपको आक्रांत करने वाला होगा, कदम पीछे हटने वाला होगा, कैसा चलो आज ऐसे ही गलत सलत कर लेते हैं, आज का काम तो हो जाए, कल से फिर नहीं करेंगे, ह्यूमन वीकनेस है भाई, दुर्बलताएं हम लोगों में नहीं होती तो फिर तो हम और परमात्मा एक ही होते। इन्हीं छोटी मोटी दुर्बलताओं के कारण भी सज्जन पुरुषों का, अच्छी निष्ठा वाली माताओं बहनों का कदम जो है वो साधना के पथ पर जगह जगह पर अटक अटक के रह जाता है। तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि आपने सत्य के नाम पर, परमात्मा के नाम पर अगर व्रत ले लिया तो अपने बल से नहीं, वो सत्य ही आपका साथ देगा, परमात्मा ही आपका साथ देगा और कठिन घड़ियों में आपको पार करा देगा। इसलिए ये दूसरा काम ये करो। उसके बाद ईश्वर विश्वासी आप हैं तो थोड़ी देर के लिए अहम शून्य होने का साधन अपनाइए। वो अहम शून्य होना कैसे होता है कि अनंत परमात्मा की शरण में अपने को डालकर समर्पण योग में रहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है, प्रभु की कृपा शक्ति की गोद में विश्राम लीजिए। तो भीतर में जो भी कुछ रहा होगा भूतकाल की बूंदों के प्रभाव को, जो भी कुछ बना हुआ होगा, अगर आधे मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, दो तीन मिनट के लिए भी बिल्कुल शांत और निरीह बालक की तरह जगत जननी माँ की करुणामयी गोद में अपने को छोड़ सकेंगे, तो महाराज जी ने मुझको आश्वासन दिया कि थोड़े से थोड़े समय में कृपालु की कृपा शक्ति जितनी सफाई तुम्हारी कर देगी उतना तुम वर्षों के अभ्यास में नहीं कर पाओगे। ये एक रहस्य है जीवन का। तो जितनी देर शांति से रहा जाए, घड़ी मत देखिए, समय बांधने की जरूरत नहीं है, करुणा सागर अपनी करुणा का विस्तार करके हमारे जैसे सभी प्राणियों का रक्षण पोषण कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। हम क्षुद्र मनुष्य उतना अपराध कर ही नहीं पाएंगे। नियम है स्थाई साधक उसे कहते हैं जो संघ की विचारधारा द्वारा अपने साधन का निर्माण करता है। उसे यह आत्मविश्वास हो जाता है कि मानव सेवा संघ की विचारधारा जीवनोपयोगी है। संस्था की दृष्टि से स्थाई साधक भी संघ का महत्वपूर्ण अंग है। आजीवन कार्यकर्ता होने के पहले स्थायी साधक होना अनिवार्य है। स्थायी साधक न हो और आजीवन कार्यकर्ता बनना चाहे और कहें कि हम खूब काम करेंगे तो वह संघ के लिए ज्यादा मंगलकारी नहीं होगा और न उसका स्वयं का हित होगा। लेकिन यदि स्थायी साधक होकर काम करें तो मानव सेवा संघ का जो उद्देश्य है अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण वह पूर्ण हो सकता है। स्थायी साधक हुए बिना संघ की सेवा का कार्य करने वाले का खुद का ही कल्याण नहीं होगा तो उसकी सेवा से संस्था का विकास भी संभव नहीं है। स्थायी साधक की पहचान क्या है? स्थायी साधक उसे कहते हैं जिसका मानव सेवा संघ की प्रणाली के अनुरूप पूरा जीवन साधन हो जाए। स्थायी साधक जो होता है वह सत्संग के द्वारा साधन का निर्माण करता है, किसी अभ्यास के द्वारा जो साधन का निर्माण करता है वह मानव सेवा संघ का स्थायी साधक नहीं है। पूरा जीवन साधन कब होगा? जब हम इस सत्य को स्वीकार करें कि
शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए और हृदय प्रेम से भर जाए, यह अस्थाई साधक का लक्ष्य है और यह सत्संग से होता है, अभ्यास के द्वारा नहीं, विश्वास और विचार के द्वारा होता है। विश्वास और विचार सत्संग का मूल आधार है। विश्वास क्या है? हमारा और भगवान का जातीय संबंध है और आत्मीय संबंध है, यह विश्वास है। विचार क्या है? कि शरीर और संसार का जातीय संबंध है। मन वाणी कर्म से बुराई रहित होने से विकास होता है, उदार और स्वाधीन होने से विकास होता है, यह विचार सिद्ध है। विश्वास से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवत प्रेम विश्वास से सिद्ध है। विचार के आधार पर स्वाधीन होने का प्रश्न और विश्वास के आधार पर प्रेमी होने का प्रश्न अस्थाई साधक होकर हल करना होगा। कुछ दिन पहले मानव सेवा संघ के माध्यम से संपूर्ण जीवन को साधनमय बनाने की अभिलाषा रखने वाले भाई बहनों ने स्थाई साधक होने का व्रत लिया था। उनका साधन और उनका सत्संग का क्रम चल रहा है। गत वर्ष इस संबंध में न कोई बातचीत हो सकी, न स्थाई साधकों का एक विशेष आयोजन प्रतिवर्ष हुआ करता था, वो भी पूरा नहीं हो सका। तो उन सारे वे सभी स्थाई साधक जो यहाँ पर विद्यमान हैं, उनके लिए भी और जो आगे चलकर संपूर्ण जीवन को साधनमय बनाने के लिए मानव सेवा संघ के स्थाई साधक होना पसंद करेंगे, उनके लिए भी यह सूचना है। क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, किस प्रकार से आप अपने साधन के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, इसकी सूचनाएं सब हैं। संघ की नीति यह नहीं है कि आप संघ की सेवा करते हैं तो बड़े अच्छे आदमी हैं और नहीं करते हैं तो अच्छे आदमी नहीं है। संघ की सेवा करते हुए अधिकार लोलुपता रखते हैं तो यह साधक का लक्षण नहीं है। इसलिए परामर्श यह है कि संघ की सेवा कीजिए अथवा मत कीजिए, पर अस्थाई साधक होकर रहिए, जो अपने पर सबका अधिकार मानता है और अपना अधिकार किसी पर नहीं मानता है, वही अस्थाई साधक हो सकता है। जो इस सिद्धांत को ठुकराता है अथवा नहीं पसंद करता है, वह स्थाई साधक नहीं है, वह सही अर्थ में साधक ही नहीं है। संघ का स्थाई साधक जो होता है, वह सेवा को प्रधानता देता है, पद को नहीं। सेवक में यदि पद लोलुपता है तो वह स्थाई साधक नहीं हो सकता। प्रश्न, मानव सेवा संघ का स्थाई साधक कौन कहलाएगा? उत्तर, जिसको यह विश्वास है कि संघ की पद्धति से मेरा कल्याण होगा। प्रश्न, स्थाई साधकों के लिए निश्चित व्रत नियमादि बनाना आवश्यक है? उत्तर, व्रत नियमादि बनाना मानव सेवा संघ की पद्धति ही नहीं है। स्थाई साधक का सबसे बड़ा व्रत यह होता है कि वह सत्संग से साधन का निर्माण करे, अभ्यास का अनुसरण नहीं करे, किसी न किसी नाते सभी को अपना माने और प्रेमी होने के लिए प्रभु को अपना माने। जो अपने को स्थाई साधक मानेगा, जिसके हृदय पर संघ की छाप लगी है, वह अपने आप ही अपना रहन सहन बदलेगा। परंतु संघ की यह पद्धति नहीं है कि साधक पर जोर डाला जाए कि तुम अपने को अवश्य बदलो। स्थाई साधक के लिए संघ की पद्धति में स्थाई श्रद्धा का होना अनिवार्य है, फिर वह आश्रम में आवे अथवा न आवे। संघ में संपत्ति लगावे अथवा न लगावे, उसको अपना कल्याण अभिष्ट होना जरूरी है। जैसे जैसे संघ की सेवा के लिए आजीवन कार्यकर्ता का एक विभाग बनाया स्वामी जी महाराज ने, कि ऐसे साधक, ऐसे भाई बहन जो आजन्म आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना करके अपने पास कोई संपत्ति न रख करके अपने को संघ की सेवा में खाद बना देने के लिए जो तैयार है, वो तो उसको आजीवन कार्यकर्ता बनाया गया, वो एक विभाग है। तो ऐसे ऐसे साधकों का संपूर्ण जीवन साधन में और संघ की सेवा में लग जाता है। फिर कुछ ऐसे घर गृहस्थी वाले लोग भी थे जिन्होंने कहा कि महाराज, हम लोगों को तो तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहिए कि जब इस प्रकार की हम तैयारी कर सकें। तो उनको तैयारी के लिए समय जो दिया गया उसमें यह बताया गया कि सब संपत्ति और सारा जीवन और सब कुछ संघ में लगाने के लिए तैयार न हो तो कम से कम अपने जीवन में से बुराइयों का त्याग करो, विचार के आधार पर अधिकार लोलुपता और पद लोलुपता का त्याग करो, जिनसे संबंध माना उनकी सेवा करो और प्रेमी होने के लिए प्रभु में विश्वास करो। और अपने यहाँ की जो यह पद्धति है कि ईश्वर विश्वास और संसार से असंग होना और उदारता पूर्वक पर पीड़ा से पीड़ित होकर सेवा करना, ये व्रत जो है ये मनुष्य के स्वधर्म है, ये सत्य की स्वीकृति से ही पूरे होते हैं, इनके लिए अभ्यास अपेक्षित नहीं है। तो जिन लोगों को अभ्यास वाले साधन में विश्वास है वे संघ के स्थायी साधक नहीं हो सकते। जिन लोगों को इस प्रणाली में विश्वास है, ये बात जम गई कि जीवन में परिवर्तन सत्संग से आता है और सत्संग मनुष्य का पुरुषार्थ है और सत्संग का परिणाम है कि जीवन में साधन की अभिव्यक्ति हो जाए, जैसे जैसे शांति की अभिव्यक्ति है, तो शांति की अभिव्यक्ति कैसे होगी भाई? तो मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, निर्मम और निष्काम होने का ये व्रत जो स्वीकार करेगा उसके भीतर शांति आ जाएगी। निर्मम और निष्काम हुए बिना थोड़ी थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठकर हाथ पांव मोड़ लेने से, आंखें बंद कर लेने से, सांस रोक लेने से शांति की अभिव्यक्ति होती होगी, यह विश्वास मानव सेवा संघ का नहीं है। तो सदस्य होने की चर्चा प्रातः काल हो चुकी थी, अब स्थायी साधक होने की चर्चा हो रही है। इस पूरी चर्चा में आप देखेंगे कि उद्देश्य केवल इतना है कि व्यक्ति स्वयं अपने विकास में अपने आप स्वाधीन होकर के आगे बढ़ सके, पराधीन न रहे। बड़े दुख की बात है, मेरे नजदीकी लोग अभी थोड़े दिन पहले आए थे यहाँ मथुरा में, एक यज्ञ होता है रामाश्रय सत्संग कहलाता है, वहाँ पर लोग आए थे। शरीर के संबंध से पुराना संबंध भी था उन लोगों के साथ, उनकी चर्चा मैं सुन रही थी। पूछा मैंने कि आप लोग क्या करते हैं, वे लोग बता रहे थे। एक महिला जिसको कि मैं बचपन से जानती हूँ उस सत्संग में है, तो वो कहने लगी कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई थी, तो हमारी गुरु माता ने अपनी ओर से 10 वर्ष मुझे दिए, अब देखो इस 10 वर्ष में काम पूरा होता है कि नहीं होता है। तो मेरी हालत तो ऐसी हो गई है कि ना हमसे जीते बनता है ना मरते बनता है। ऐसे वो कह रही थी। तो मैं नहीं कहती हूँ कि उस सत्संग का दोष है, सत्संग में क्या होता है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन साधक की इस दशा को देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ कि आदमी जिस बात में स्वाधीन है उसमें भी अपने को कितना पराधीन बना के बैठ गया। बहुत तकलीफ। और फिर मेरे मुझसे पत्र व्यवहार उनका होता रहता है, तो चिट्ठी लिखती हैं, तो जो भी कुछ अपने मत के अनुसार लिखती हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ। मानव सेवा संघ की यह नीति ही नहीं है कि दूसरे साधक की दूसरी दूसरी प्रणाली की साधनाओं में उस बेचारे के लिए विकल्प खड़ा कर दो कि संदेह पैदा कर दो, ये अपने लोगों का काम ही नहीं है। भाई तुम कहीं के भी साधक हो और किसी भी प्रकार की प्रणाली तुम्हारी हो, मैं तो हृदय से यही चाहूंगी कि भगवान तुम्हारी ही प्रणाली से तुमको पार लगा दे, तुम्हारा कल्याण हो जाए, ये मुख्य बात है। और मैं जैसे कहती हूँ वैसे करके हो जाए और दूसरे जैसे कहते हैं वैसे ना हो, वो नहीं है। कहीं से भी सीख के आओ, कोई भी मत विचार संप्रदाय तुम्हारा हो, किसी भी प्रणाली का अनुसरण तुम करते हो, मेरे हृदय की सद्भावना यही है कि तुम्हारा कल्याण तुम्हारी ही प्रणाली से हो जाए, प्रभु तुम्हारे पर कृपा कर दें, सहायता दे दें, तुम्हें पार लगा दें, तो आदमी शांति प्राप्त कर सके, आदमी पराधीनता से मुक्त हो सके। ईश्वर में विश्वास करने वाला अपने ही हृदय में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करके प्रेम में मस्त हो सके, बस इतना ही उद्देश्य है। तो उनको मैं उत्तर देती रहती हूँ, तो उत्तर दे देती हूँ उनकी बातों का उल्लेख किए बिना। संघ के सिद्धांत के अनुसार जो जीवन का सत्य है उसी के आधार पर मैं उत्तर दे देती हूँ। तो एक बार आई हमारे पास चिट्ठियों का उल्लेख करते हुए कहने लगी कि देखो गुरु माता ने तो हमारा इतना इतना काम कर दिया और अब छोटी छोटी शक्तियों ने ऐसा ऐसा परमिशन दे दिया है, अब बड़ी शक्ति का परमिशन मिल जाएगा तो ये काम हो जाएगा। हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रही। हम कहें कि तुम लोग कहाँ जाकर के किस पराधीनता में फंस गए भाई, सब कुछ करने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम स्वयं अपनी जानी हुई भूल को मिटा सकती हो, तुम स्वयं ईश्वर को मान करके उनमें विश्वास करके उनके शरणागत हो सकती हो। अभी बीच में कौन छोटी छोटी शक्तियां हैं, कौन बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ये क्या है, तो कुछ हमारी समझ में नहीं आ रही। और बड़ा दुख होता था मुझे, वो तो नजदीक की है, उसको तो मैं खूब डांटती भी हूँ, मना भी करती हूँ, बताती भी हूँ कि भाई ऐसे ऐसे मत करो, तो बड़ा अफसोस होता है। स्वामी जी महाराज ने कितना स्पष्ट कर दिया अपने लोगों का रास्ता और कितने खुले शब्दों में कह दिया कि भाई तुम संस्था में संपत्ति लगाओगे तो अच्छे आदमी कहलाओगे, सेवा करोगे तो अच्छे आदमी कहलाओगे और नहीं करोगे तो अच्छे आदमी नहीं कहलाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा आदमी कौन है जो अपने अधिकार का त्याग करता है, दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है? अच्छा आदमी कौन है जो पद लेकर के भी सेवा करता है, पद त्याग करके भी सेवा करता है? अच्छा आदमी कौन है जिसने अपने चित्त को निर्विकार बना लिया? अच्छा आदमी कौन है जिसने ईश्वर में विश्वास करके अपने को उनके समर्पित कर दिया? ठीक है ना? स्थाई साधक के लिए संघ की पद्धति में स्थाई श्रद्धा का होना अनिवार्य है, फिर वह आश्रम में आवे अथवा न आवे, संघ में संपत्ति लगावे अथवा न लगावे, उसको अपना कल्याण अभ्यस्त होना जरूरी है। संघ का स्थाई साधक होने का ये शर्त है। अपना कल्याण आपको अभीष्ट होना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसके रहन सहन में स्वयं ही परिवर्तन आ जाएगा। प्रश्न है, स्थायी साधक को क्या करना चाहिए? उत्तर, सेवा, सार्थक चिंतन, जितेंद्रियता, यह सब करना चाहिए। स्थायी साधक में अपने कल्याण की बात मुख्य है, साधन निर्माण के साथ साथ उसे सेवा करना है। स्थायी साधक का मतलब यह है कि वह इंद्रिय लोलुपता से जितेंद्रियता की ओर और स्वार्थ भाव से सेवा की ओर बढ़े। उसके भीतर यह पीड़ा होती रहे कि हाय कैसे आगे बढ़ी, कैसे आगे बढ़े। स्थायी साधक हुए बिना जो सेवा करता है वह भोगी है। स्वामी महाराज का वाक्य है, स्थायी साधक हुए बिना सेवा करने का क्या मतलब? जो अधिकार लोलुपता से मुक्त नहीं हो सका, जो सेवा करने के लिए सभी को अपना नहीं मान सकता, जो वस्तुओं के प्रति अपनी ममता नहीं तोड़ सकता, उसका सेवा करना सेवा हो सही नहीं। जो सम्मान के लिए सेवा करता है, जिसको अपना कल्याण अभिष्ट नहीं है, वह स्थायी साधक नहीं है। स्थायी शब्द केवल इसलिए उसमें जोड़ा गया कि दो तरह के लोग समाज में पाए जाते हैं। हमें आना, मानव सेवा संघ ज्वाइन करना, विधि के अनुसार सदस्य बनना, स्थायी साधक होने का व्रत लेना, आजीवन कार्यकर्ता होना अनिवार्य नहीं है। आप मनुष्य हैं, आपके भीतर शांति, स्वाधीनता और प्रेम की मांग है, तो उस मांग की पूर्ति के लिए मानव सेवा संघ जो सलाह देता है, उस सलाह को मान लिया और अपना कल्याण कर लिया, तो इस दृष्टि से आप भी हमारे लिए बड़े सहयोगी हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके भीतर यह लालसा जगती है कि अच्छा ऐसा स्वतंत्र विचार कि जिसमें किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है। गरीब हो तो क्या, अमीर हो तो क्या, और पढ़े लिखे हो तो क्या, और बिना पढ़े लिखे हो तो क्या, कुछ परवाह की बात नहीं है। शरीर रोगी है तो भी, स्वस्थ है तो भी, उच्च वर्ण में जन्मे तब भी, निम्न वर्ण में जन्मे तब भी, मनुष्य यदि मनुष्य है तो उसकी बनावट ही ऐसी है कि वह शांति, स्वाधीनता और प्रेम की मांग अनुभव करेगा, और जिसमें यह मांग पैदा हो जाएगी उसकी उन्नति आरंभ हो जाएगी। मांग पैदा होने से उन्नति आरंभ हो जाती है और मांग तीव्र होने से जीवन पूर्ण हो जाता है। तो इसमें स्वाधीनता है, पूरी स्वाधीनता है। जब ये चर्चा हो रही थी तो किसी ने स्वामी जी महाराज से पूछा कि हम तो घर छोड़ के अभी निकल नहीं सकते हैं और कमाई हुई संपत्ति अभी हमारे परिवार को भी बहुत जरूरत है, तो समाज की सेवा कर नहीं सकते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ें? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम धन कमाओ ईमानदारी से और मर्यादा पूर्वक काम भी करो, उदारता पूर्वक परिवार के साथ रहो भी, लेकिन तुम्हारे भीतर एक लगन उठनी चाहिए। कौन सी लगन? कि सोते जगते उठते बैठते काम धाम करते हुए भीतर एक लगन लगी रहे कि मैं कैसे साधना में आगे बढ़ूं, मैं कैसे आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ूं, मैं कैसे ईश्वर विश्वास में आगे बढ़ूं। तो तुम्हारे भीतर की जो यह लगन है, कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, इस लगन में ही तुम्हारी उन्नति आरंभ हो जाएगी। और साहित्य में आपने पढ़ा होगा, स्वामी जी महाराज ने जो साहित्य हम लोगों के सामने रखा है उसमें आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य के जीवन में मांग की जागृति से ही मांग की पूर्ति हो जाती है। इसी आधार पर कहा गया कि इसमें काल और स्थान का कोई भेद नहीं है, बाहरी परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है, इन सब बातों से कुछ मतलब नहीं है। और अब मैंने जीवन का विश्लेषण करके देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी भाई बहनों को जो परिस्थिति मिली है वही हमारे जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। जो मिला है सो कितनी बड़ी बात है, आप सोच करके देखिए। मुझे एक बहन मिली थी, बरेली में सत्संग होता था, प्रतिवर्ष जाती थी मैं, 80 में नहीं गई थी, समय नहीं था, कई वर्ष पहले की बात है। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी कि भाई सत्य की अभिव्यक्ति में और शरीर की दशाओं से कोई संबंध ही नहीं है। तो सुना उन्होंने, जब मैं सत्संग से बाहर निकली तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और खूब गले से लिपट गई और रोने लगी। तो मैंने कहा कि क्या बात है भाई, आप क्यों रो रही हैं? तो उस महिला ने कहा कि आप तो कह रही हैं कि भगवान तो रोगी को भी मिलते हैं, निरोगी को भी मिलते हैं, तो सच्ची बात है। मैंने कहा कि हाँ बात तो सच्ची है, सच्ची जान करके ही मैं कह रही हूँ। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि कई वर्षों से मेरा शरीर अस्वस्थ है, सास और पति सेवा करते रहते हैं और मैं बहुत दुखी रहती हूँ कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई, सास की सेवा मुझे करनी चाहिए, पति की सेवा मुझे करनी चाहिए, तो ये दोनों हमारे शरीर की देखभाल में लगे रहते हैं तो मुझे तो जिंदगी भार मालूम होती है, ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी कब को ये शरीर खत्म हो जाए तो अच्छा है। तो कई वर्ष इस दशा में बीत गए, पता नहीं आज मुझको क्या हो गया, सवेरे से ही मेरे दिल में एक बात लगी और मैंने इन माँ बेटों से दोनों से कहा कि आज मुझको आश्रम में ले चलो, सत्संग हो रहा है, आज मैं सुनने जाऊंगी। तो ये लोग ले आए। तो आप तो ऐसे ऐसे कह रही हैं, हमने कहा कि हाँ भाई ठीक है, अनुभवी संत के मुख से मैंने सुना है और मैं विश्वास करती हूँ कि ये सत्य है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो कहने लगी कि बहुत अच्छी बात है, तो अब तो मैं मरने को नहीं सोचूंगी, अब तो मैं सोचूंगी कि भगवान अगर बीमार को भी मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम घर का काम नहीं कर सकते, सास और पति की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान को तो पा सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ पा सकते हैं। तो बातचीत करके वो चली गई, मैं भी भूल गई, फिर उसके बाद क्या ध्यान रहे। फिर कई वर्षों के बाद वही महिला मिली मुझे, खूब हृष्ट पुष्ट शरीर तंदुरुस्त, और आकर के फिर हमसे लिपटी और कहने लगी कि माता जी मुझे पहचाना आपने? हमने कहा कि भाई मुझे याद तो नहीं है। फिर उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा कि देखिए तो मुझे तो बहुत आराम मिल गया, बहुत आराम मिल गया, तो शरीर भी अच्छा हो गया, सास और पति की सेवा न करने का दुख भी मिट गया और ईश्वर विश्वास भी मिल गया। बहुत आनंदित हो गए। तो यह जो एक स्वाधीन पथ है कि कोई इस दिशा में पराधीन नहीं है, एक विशेष संप्रदाय की महिला स्वामी जी महाराज के सत्संग में आकर के बहुत आनंदित हो गई, अब तो उनका सारा परिवार ही मनोहर संगी है। तो वो कहती थी कि मैंने अपने यहाँ मैंने उनके संप्रदाय में ये सुना था कि स्त्री शरीर में आदमी की मुक्ति मिल होती है, बहुत ही दुख की बात। अब शरीर को भगवान ने जो दिया है तो दिया है, अब क्या करें उसका। तो मैं ऐसा एक दो उदाहरण अपने लोगों के सामने रख रही हूँ कि मानव सेवा संघ ने इस प्रकार की पराधीनता मनुष्य के सामने नहीं रहने दिया कि स्त्री शरीर होने के कारण से तुम मुक्ति से निराश हो जाओ, कि बीमार होने के कारण से तुम ईश्वर भक्ति से निराश हो जाओ, ऐसा नहीं। कि पढ़ा लिखा नहीं है तो ज्ञान से निराश हो जाओ, ऐसा नहीं है। शरीर की और बाहर की परिस्थितियों से सत्य की अभिव्यक्ति में कोई भेद नहीं पड़ता है। इस बात को हम सब भाई बहन जान लें और अपने कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहें। तो मैंने महाराज जी के मुख से ऐसा सुना है और बात बिल्कुल पक्की लगती है मुझे कि प्रभु की कृपालुता और संत की सद्भावना सदैव सभी साधकों के साथ रहती है। और सचमुच जो अपनी दशा से असंतुष्ट होकर अविनाशी जीवन की अभिलाषा लेकर आगे बढ़ता है, जीवन का मंगलमय विधान इतना सुंदर है कि उसके जीवन में पूर्णता अवश्य आती है। तो अपना कल्याण अभीष्ट हो, सत्संग की महिमा में निष्ठा हो और सत्संग के द्वारा साधन का निर्माण करना चाहे और यथासंभव यथाशक्ति जहाँ पर है वहीं पर सुख और स्वार्थ को छोड़ करके सेवा पसंद करें तो आप मानव सेवा संघ के स्थायी साधक हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे आपके जीवन में शांति की अभिव्यक्ति होने लगेगी, शरीर और संसार की दासता कट जाएगी, तो आपका वह कल्याणमय जीवन ही मानव सेवा संघ का जीता जागता चित्र बन जाएगा और उसके प्रभाव से समाज में बहुत अच्छे भावों और विचारों का प्रसार होगा।